అఖండమండలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరం తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శంకరం శంకరాచార్యం కేశవం బాదరాయణం సూత్రభాష్యకృతౌ వందే భగవంతౌ పునః పునః. ఈశ్వరో గురురాత్మేతి మూర్తిభేద విభాగినే వ్యోమవద వ్యాప్తదేహాయ దక్షిణామూర్తయే నమః. ఓం సహనావవతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః. कल हमने विचार किया था अध्यास का. अध्यास को तो बार बार चिंतन करेंगे तभी वो घटता है, नहीं तो वैसे घटता नहीं है. उसके आगे भी अध्यास तो बताया, उस दिन बताया था केवल संबंध का अध्यास है, संबंध सहित संबंधी का अध्यास है, धर्म का अध्यास है, धर्म सहित धर्मी का अध्यास है, अन्योन्याध्यास है, नेत्राध्यास है, अनेक प्रकार का हो जाता है. तो हमारे को तो केवल समझना तो इतना ही है कि अध्यास क्या चीज है. अध्यास मतलब भ्रांति है. तो भ्रांति होती है वस्तु की और वस्तु के ज्ञान की, दो प्रकार की भ्रांति है. उसी को बार बार हम चिंतन करेंगे कि हमारे को जो भ्रांति हो रही है आत्मा में, अनात्मा की, प्रपंच की, ये कैसे हटेगी, हो कैसे रही है. कल तो हमने किया था स्थूल शरीर में हो रही भ्रांति हमारे को कि मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, ये हमारे को इस शरीर में भ्रांति हो रही है, ध्यास हो रहा है. तो इसको हमारे को हटाना है कि मैं शरीर जब नहीं हूँ तो शरीर के धर्म मेरे में कहाँ से आएंगे. क्योंकि जब स्वप्न में जाते हैं तो ये शरीर हमारा रहता नहीं है, तो हम तो स्वप्न में भी रहते हैं. जब सो जाते हैं तब भी हम होते हैं, लेकिन शरीर वहाँ ये काम नहीं करता. यदि शरीर हम होते तो हम वहाँ नहीं होने चाहिए, हम वहाँ भी रहते हैं. जब स्वप्न से आगे सुषुप्ति में चले जाते हैं गाढ़ निद्रा में, तब भी वहाँ स्वप्न भी नहीं होता, वहाँ सूक्ष्म शरीर भी नहीं होता, तब भी हम होते हैं. इसलिए हमारा शरीरों से कोई संबंध नहीं है. जब हमारा शरीरों के साथ कोई संबंध नहीं है तो जो शरीर के धर्म है वो भी हमारे में नहीं है. ना हम मोटे हैं, ना पतले हैं, ना गोरे हैं, ना काले हैं, ना ब्राह्मण हैं, ना क्षत्रिय हैं, ना सुखी हैं, ना दुखी हैं, कोई भी हमारे में धर्म नहीं है. ये सब अंतःकरण का धर्म है या शरीर का धर्म है. अंतःकरण का अर्थ समझते हैं जो हमारे अंदर वाले करण हैं. करण कहते हैं साधन. मन को कहते हैं, मन का नाम है, बुद्धि का नाम अंतःकरण है, मन का नाम अंतःकरण है. हम मन भी नहीं है, हम बुद्धि भी नहीं है, हम चित्त भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है. अंतःकरण हम नहीं है, अंतःकरण हमारा नहीं है. हम इससे पृथक हैं, अलग हैं. ये बैठ करके चिंतन करने से अध्यास की निवृत्ति हो जाती है. यही तो हमारी मुक्ति है, बस इससे अलग हो जाना. इससे अलग होने का मतलब ये नहीं कि इसको छोड़ना तो है ही नहीं, हमने छोड़ना नहीं इसको. इसका जो हमारे को मोह है ना, उसको छोड़ना है. शरीर थोड़ी छोड़ना है. शरीर तो जब छूटना होगा अपने आप छूट जाएगा, इसको हमारे को छोड़ना नहीं पड़ेगा. ये हमारे कहने से छूटेगा भी नहीं, ना हमने इसको छोड़ने का प्रयत्न करना है. इसका जो हमारे को मोह है ना, अध्यास है, उसको छोड़ना है. शरीर को नहीं छोड़ना, शरीर अपने आप छूट जाएगा. आवाज थोड़ी कर देना. महाराज जी ये भी लंदो महाराज
जी नहीं 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 कोई नहीं
तो शरीर को छोड़ना नहीं है किसी शरीर को भी शरीर अपने आप इसकी प्रारब्ध जब समाप्त हो जाएगी तो छूट जाएगा गिर जाएगा इसको हमारे को छोड़ने के लिए यत्न नहीं करना पड़ता क्योंकि इसका तो नियम है जो छह विकारों वाला शरीर है इसमें छह विकार होते हैं कौन कौन से शेष में दोष हैं विकार हैं पहले कहते हैं जायते अस्थि वर्धते विप्रणमते अपक्षीय विनश्यति ये छह प्रकार का दोष हमारे शरीर में है कौन सा जायते पहले जायते मतलब बच्चा जन्म ले रहा है पैदा हो रहा है जब पैदा हो रहा है तो उस समय स्पष्ट नहीं होता कि लड़की है लड़का है क्या है बच्चा पैदा हो रहा है उसको कहते जायते फिर अस्थि जन्म ले लिया बच्चे ने लड़की लड़का जन्म ले लिया फिर कहते वर्धते फिर उसके बाद बढ़ता है धीरे धीरे फिर क्या होता है अपक्षीयते घटना शुरू हो जाता है उसके बाद विनश्यति नष्ट हो जाता है ये सब इसी में है ना हमारे में थोड़ी है ये सब दोष हमारे शरीर में है हमारे में दोष नहीं है कोई भी आत्मा इससे असंग है उसमें कोई दोष नहीं हमारे में दोष नहीं है ऐसे जो शेव विकार वाला शरीर है ये हम नहीं है हमारा इससे कोई मतलब नहीं है तो हम लोग चिंतन यही करना है कि हम लोग जब नहीं हमारे में ये चीज़ें तो हमको बार बार दुखी क्यों होता हमारा मान केवल हमने मान ही तो रखा है ना इसको अपने में केवल हमने माना हुआ है जब हम संसार के संबंध दुखी होकर के कई बार छोड़ देते हैं मान्यता तो फिर समाप्त तो हो ही जाते हैं कि नहीं होते हैं इसको हम समाप्त नहीं कर पाते क्योंकि हम छोड़ने का जो संबंध हमने मान रखा ना उसने मान्यता को हटाना नहीं चाहते हम लोग जैसे लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं ना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं कोई जो हिंदू है वो ईसाई हो जाता है या मुसलमान हो जाता है क्या होता है उसका उसका कोई शरीर थोड़ी बदला है ना वो आदमी बदला है उसने मान्यता को बदल दिया उसने कहा मैं हिंदू धर्म को मानना उसने छोड़ दिया ईसाई धर्म को मानना शुरू कर दिया बदला तो नहीं है वो अंदर से तो वैसे का वैसा ही है उसमें कोई बदलाव नहीं आया बाहर से उसने ऐसा मनो लोगों को कह दिया भी मैं इस धर्म को छोड़ दिया उसको पकड़ लिया छोड़ना पकड़ना उसके मन की बात है ना और उसने क्या पकड़ा है ईसाइयों का उसने क्या पकड़ा है उनके नियम को उसने पकड़ लिया इनका नियम छोड़ दिया तो उसकी अपनी मान्यता है ना कल्पना की ना उसने ये कल्पना छोड़ के उसकी कल्पना को पकड़ा तो है तो दोनों झूठा है ना जब हम छोड़ सकते हैं इसका मतलब जब हम उस धर्म को छोड़ के दूसरा पकड़ सकते हैं तो हम कोई मान्यता को हटा सकते हैं हमने जो माना हुआ है उसको हटा सकते हैं हम लोग तो ये सब बातें हमने मानी हुई है कि मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ या मैं छोटा हूँ मैं पतला हूँ इसको हटाना ही तो है भी नहीं मैं मोटा पतला नहीं हूँ इतना ही तो कहना है जब हम धर्म परिवर्तन कर सकते हैं इतने सालों का तो ये क्यों नहीं होता हमारे से केवल हम मानना इसको हटाना ही नहीं चाहते क्योंकि हमारी बार बार हमारे को रस आता उसमें ऐसा मानने में हमारे को रस आता है मैं ब्राह्मण ब्राह्मण का या क्षत्रिय का या शूद्र का हमारे को अहम है कि मैं ब्राह्मण हूँ मैं क्षत्रिय हूँ हमारी मैं उसके साथ जुड़ी हुई है ना उसको हम छोड़ना नहीं चाहते रस आता उसमें हमारे को तो जब ये बातें होती है नीरस हो जाता है आदमी रस से परे हो जाता है ना जब तभी होता है जब तक रस लेता है ना इसमें तब तक नहीं आता तभी कहते हैं महात्मा नीरस होते हैं ना वो बेस्वाद होते हैं वो उनको रस नहीं आता रस लेना छोड़ देते हैं वो क्योंकि रस तो एक विषय है ना इसलिए वो रस नहीं लेते नीरस हो जाते हैं बेस्वाद हो जाते हैं स्वाद नहीं लेते क्योंकि उनका रस से परे हो जाते हैं विषय से परे हो जाते हैं जब तक संसार में हमारे को रस मिलता है ना तब तक हम छोड़ नहीं पाते जब कहीं किसी घटना से हम लोग दुखी होते हैं ना तब थोड़ी देर के लिए ये रस हमारे को नहीं आता कभी कभी होता जब घटना होती है हमारे साथ उसको कहते हैं वैराग्य हो गया कोई हमारा बंधु बांधु जो चला गया कोई हो गया घटना हो गई हमारे घर को आग लग गई या लूट गया ऐसी घटनाएं जब होती है तो थोड़ी देर के लिए हमारे को रास आता नहीं हट जाता है तब हमारे को लगता है कि ये संसार झूठा है उस समय लगता है, क्योंकि हमारा थोड़ी देर के लिए संबंध टूट जाता है। या जैसे कोई बेड़ी में, नौका में, जहाज में कहीं कोई गड़बड़ हो गया तो वहां एक सेकंड में हमारा संबंध टूट जाता है, होता है कि नहीं? जब पता चलता है कि अब गए, उस समय हमारे को संसार एक क्षण के लिए झूठा लगता है, ये ऐसे ही करते रहे, कुछ नहीं बचा, वैसा हुआ। वहीं फिर स्थिति ठीक हो जाए तो उसी समय फिर वहीं आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम संबंध नहीं तोड़ पाते। जब हमारे को पता चलता है तब थोड़ी देर के लिए, क्षण मात्र के लिए संबंध टूट जाता है। यही तो अध्यास है, जो हमारे को भ्रम हुआ है मध्य काल में होता है ना, पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहता, बीच में होता है। तो इस अध्यास को बार बार चिंतन करने से छूटेगा, ऐसे तो छूटेगा नहीं। बार बार चिंतन करेंगे कि इसमें हम फंस रहे हैं तो क्यों फंस रहे हैं, कारण क्या हुआ। केवल हमारी मान्यता नहीं हट रही कि हम सुखी हैं, हम दुखी हैं, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, ये मेरे से छोटा, ये मेरे से बड़ा है, ये गरीब है, मैं अमीर हूँ, ये हमारा हमने मान रखा है ना, और तो कुछ नहीं है। हम भी रोटी खाते हैं, गरीब भी रोटी खाता है, क्या फ़र्क है हमारा उनका, कोई फ़र्क नहीं है। हम एसी में सो जाते हैं, वो वैसे सो जाता है, सोता तो वो भी हमारी तरह ही है, हमारे से अच्छी नींद उसको आती है, हम लोगों को नहीं आती। एसी में सोने वालों को इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, लेकिन जो फुटपाथ पे पड़ा उसको मालूम नहीं रहता कहाँ पड़ा है वो। तो अंतर क्या हुआ? वही अंतर नहीं हुआ, हमने मान रखा अहम है हमारे अंदर कि हम बड़े हैं, वो छोटा है। उसकी आत्मा में, हमारी आत्मा में कोई अंतर नहीं है, ना हमारी भूख में अंतर है, ना हमारी निद्रा में अंतर है, कोई अंतर नहीं है। हमारे को वैसी नींद आती है, उसको वैसी नींद आती है, वो भी सोता हम भी सोते हैं, वो भी खाता हम भी खाते हैं। खाने खाने में अंतर हो सकता है, लेकिन खाना तो खाना ही है, भूख मिटाना उसका काम है, हमारा काम भूख मिटाना ही है। हम कितने भी पदार्थ खा लेते हैं, भूख ही मिटती है, और हमारे में कोई बढ़ाई थोड़ी आती है, उसकी भी भूख ही मिटती है, हमारी भी भूख ही मिटती है। वो भी नींद लेके आराम लेता है, हम भी आराम ही करते हैं, और क्या करते हैं, तो फर्क क्या पड़ा? और आराम करने से हमारे को क्या अंतर पड़ता है? लगता है ना कि थके हुए, थका क्या शरीर होता, हम थोड़ी थके होते हैं। हम तो शरीर जब पड़ जाता है तब भी हमारा चिंतन तो चलता ही रहता है, शरीर के पड़ जाने से हम लोगों को हम रोक थोड़ी जाते हैं, शरीर को टिका देते, शरीर थक जाता है, लेकिन हम लोगों का तो चिंतन चलता ही रहता ना। यदि सो जाएंगे तो स्वप्न में चले जाएंगे, स्वप्न से हटेंगे तो गाढ़ निद्रा में, सुषुप्ति में चले जाएंगे। लेकिन हमारे जो इंद्रिय है ना, जो सूक्ष्म रूप में काम करते रहते हैं, रुकते नहीं है, जागृत में स्थूल रूप में काम करते हैं, स्वप्न में वासना का रस लेते रहते हैं, और सुषुप्ति में जाते हैं तो इंद्रिय चले जाते हैं, तब भी उनकी अज्ञान रूप तो किरणें उसकी रहती है, अज्ञान रूप वृत्ति तो तब भी रहती है भाव। वहां पर भी ज्ञान और अज्ञान दोनों है, हम तीनों अवस्थाओं में हैं, तीनों शरीरों में हैं। तो शरीर भी अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, अवस्था भी भिन्न भिन्न है, हुई नहीं है कभी, केवल काल का भेद किया हुआ है, ये काल है, ये काल है, ये काल है। काल की बांट, काल को हमने बांटा हुआ ना, उसको जागृत बोल दिया, उसको स्वप्न बोल दिया है, तो काल है ना, तो काल भी तो काल का भी तो कोई काल है, एक काल है, एक महाकाल है, उसका भी काल का भी जो काल है वो महाकाल है। और सुकाल सभी बस काल के एक ही काल, अकाल सदा है, ये कहते हैं महाराज जी, एक ही काल अकाल सदा है। और सारे जितने भूतमा भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्यत काल है, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, दिन है, महीने हैं, वार है, सब काल ही तो है ना। कहते हैं जितने काल, मतलब समय, जितने काल हैं सभी वस काल के, उन काल का भी काल होता है। दिन का दिन एक काल है ना, समय है, उसका भी अंत होता है, रात्रि एक समय है, उसका भी अंत होता है, महीने का भी अंत होता है, वर्ष का भी अंत होता है, कल्प का भी अंत होता है, भाव उनका भी काल है कोई। वो जो काल है वो अकाल सदा है, जो सबका काल करने वाला काल है वो अकाल है, उसका काल नहीं कभी होता। सबको काल, सबन को करता, रोग दोग सोकन को हरता, ये महाराज जी का वचन है। सबको काल, सबन को करता, रोग सोक दोखन को हरता, एक चित जे एक क्षण त्यायो, काल फास के बीच ना आयो। ये गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं ऐसा जो काल है ना, सबको काल सबन को करता, रोग सोग दुखन को हरता, एक चित जह एक क्षण ध्यायो, एकाग्र चित हो करके जिसने एक क्षण मात्र भी उसका आराधन किया है ना, काल फांस के बीच ना आयो, वो कभी भी काल की फांसी के बीच में नहीं आता। जिसने उसका ध्यान किया है, जो सबका काल है, सबका काल मतलब हमारा अपना आप है, उसका जिसने चिंतन किया है ना, वो काल फांस के बीच ना आए, वो कभी आता नहीं है, काल की फांसी में नहीं पड़ता। हम लोगों को इसलिए जन्मना मरना पड़ रहा कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, शरीर जन्मता है शरीर मरता है, इसलिए हम अपने आप को शरीर के साथ मरा हुआ मानते हैं, शरीर के साथ ही जन्मा हुआ मानते हैं। लेकिन हमारा जन्म मरण शरीर के साथ है नहीं। ना जायते मृियते वा कदाचिन न अयम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या शाश्वतो यम प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये भगवान कृष्ण ने कह दिया देखो स्पष्ट रूप में, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, जो हनन करने के योग्य जो शरीर है उसके हन्यमाने, उसके मरने पर न हन्यते, आत्मा का कभी हनन नहीं होता, उसको कभी भी शस्त्र नहीं काट सकता, उसको अग्नि नहीं जला सकती, उसको हवा नहीं सुखा सकती। इसलिए नैनम शिंदंती पावकाणी, उसको शास्त्राणी नैनम दहिति पावक, उसको पावक नहीं जला सकता, उसको शस्त्र नहीं काट सकता, उसको पानी नहीं डुबा सकता। ऐसा हमारा अपना आप है, लेकिन हम लोग तो थोड़ा सा भी कहीं जाते हैं तो हमारे को डूबने का भय हो जाता, हम डूब जाएंगे। डूबता तो शरीर है, हम थोड़ी डूबते हैं। जब हम फेंक देते हैं मुर्दे को जा करके तो मुर्दा ही होता है, शरीर होता है ना, वो हम थोड़ी होते हैं उसमें। हम कहते हैं हम फलाने आदमी को जल प्रवाह कर दिया, उसको थोड़ी जल प्रवाह किया, उसके शरीर को किया जल प्रवाह, उसको नहीं किया। जल डुबा ही नहीं सकता कहते हैं तो जल में वो कैसे डूबेगा, जो जल का भी आधार है वो जल में कैसे डूबेगा। हम कहते हैं हम उस आदमी को जल समाधि दे दी है, आदमी को नहीं दी, उसके शरीर को दी है। यदि जल समाधि दे के समाप्त हो गया तो घर आके उसका पाठ क्यों कराते हैं, जल समाधि भी दे आए हैं और पाठ भी करा रहे हैं तो क्या हुआ इसका, मतलब उसके शरीर को छोड़ के आए हैं, वो तो अभी है, उसके लिए हमारे को संशय है भी वो कहाँ है, तभी पाठ करा रहे हैं ना। शरीर को छोड़ आए हैं, उसको नहीं छोड़ा है, वो तो हमने पकड़ रखा उसको, तभी कहते हैं उसका पाठ कराना है, तभी उसके श्राद्ध कराते हैं, कि साल के बाद भी श्राद्ध कराते हैं। साल के बाद क्या, 50-50 साल हो गए हमारे, 100-100 साल हो गए पितर हमारे गए, तो उनके श्राद्ध क्यों कराते हैं, इसका मतलब भी हैं कहीं वो बैठे हुए ना, तभी तो कराते हैं ना उनको प्रसन्न करने के लिए। तो यदि वो शरीर के साथ मर गए तो फिर उनको क्या, कौन खाएगा। हम उनको मानते हैं ना किसी पुरी में वो बैठे हैं, तभी तो उनको श्राद्ध तर्पण गायत्री सब कुछ करते हैं, इसका मतलब हम शरीर के साथ नहीं मरते हैं। ये सब करते हुए हम लोग समझ नहीं पा रहे, फिर भी कहते हैं कि नहीं फलाना आदमी मर गया, मरने के बाद जीता भी है, उसको जीता समझ के पूजन भी करते हैं उसका, तब भी कहते हैं कि नहीं। इसका मतलब क्या, ये हमारे को अध्यास पड़ गया है, उसको देखते हुए समझ में नहीं आ रहा। इसको तो हटाना है कि जब हम उसको मान रहे हैं कि वो आदमी है, उसका हम श्राद्ध कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, उसको जीता हुआ मान के करते हैं ना, भले वो शरीर छोड़ गया लेकिन कहीं ना कहीं है ये हमारे को, है भी कहीं है, यहाँ से शरीर जो है उसमें नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं है। तो इसका मतलब शरीर के बाद भी वो आदमी रहता है, जैसे दूसरा रहता है ऐसे हम भी रहते हैं। जब तक हमारे को ज्ञान नहीं होता तब तक हमारा भटकना होता है, लेकिन जिसको ज्ञान हो जाता है वो शरीर छोड़ने के बाद में रहता नहीं है। जिस रूप में हम मानते हैं इस रूप में नहीं रहता, रहता तो है लेकिन फिर किस रूप में रहता, ब्रह्म रूप में रहता है, व्यापक रूप में रहता है। जब किसी को ज्ञान हो जाएगा तो वो भी रहेगा, लेकिन ऐसे नहीं रहेगा जैसे हम मानते हैं कि वो बैकुंठ में होगा, स्वर्ग में होगा, पितृपुरी में होगा, ऐसे नहीं होगा, किसी पुरी में नहीं रहेगा वो, वह फिर सभी जगह व्यापक रूप में रहेगा, रहेगा जरूर, उसका कभी नाश होना ही नहीं है। तो ये हमारे को केवल अध्यास पड़ा हुआ है, भ्रांति हो गई हमारे को। इतना बार बार बताते हैं कि इसको जानो के तीन देह का मैं दृष्टा हूं, तीन जो अवस्थाएं हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति उनसे भी मैं अलग हूं, जो पांच कोश हैं उनसे भी मैं परे हूं। पांच कोश हैं, पांच पर्दे हैं, उन पर्दों के बीच में मैं नहीं हूं, उनसे भी मैं परे मतलब सूक्ष्म हूं, उनको भी लांग करके देखेंगे तब भी मैं हूं। अन्नमय कोश है बाहर वाला, इसको कहने हैं अन्नमय कोश, इससे मैं सूक्ष्म हूं, भाव परे हूं, इसका आधार हूं, इससे परे हूं। इसके आगे प्राणमय कोश है, भाव प्राणों से भी मैं परे हूं। और उसके आगे मनोमय कोश है मन, और ज्ञान इंद्रिय उससे मैं परे हूं। फिर विज्ञानमय कोश बुद्धि और ज्ञान इंद्रिय उससे भी मैं परे हूं। फिर विज्ञानमय कोश भाव कारण शरीर अज्ञान उससे भी मैं परे हूं, क्योंकि मैं ज्ञान हूं और ज्ञान सबका प्रकाशक होता है। ज्ञान का अर्थ है प्रकाश स्वरूप, तो ज्ञान के अंदर ही अज्ञान प्रकाशित होता है ना, अज्ञान कहीं अलग थोड़ी रहेगा। ये जितना प्रपंच भास रहा है हमारे अंदर ही भास रहा है, चंद है, सूर्य है, अग्नि है, लाइट है, ये सब ज्योतियां हैं। दिन में चंद्र सूर्य होता है, रात्रि को चंद्रमा होता है, जिस दिन चंद्रमा नहीं होता तो दीपक होता है या लाइट होती है। जब लाइट भी नहीं होती तब हमारे को कैसे प्रकाश मिलता है, जिस दिन लाइट भी नहीं होती, चंद्रमा भी नहीं होता, उस समय हमारी अपनी आप, हमारा अपना आप है, तब भी हमारे को पता चल जाता है। लाइट भी ना हो, चंद्रमा भी ना हो, तब भी कोई आवाज़ देता है तो क्या हम पहचान नहीं पाते अपने आप को? बिल्कुल अंधेरा होता है, उसमें कौन प्रकाश है जो बताता है, तब भी हम कहते मैं हूँ। इसका मतलब हम सब ज्योतियाँ जो है बुझ जाती हैं, सब ज्योतियाँ लोप हो जाती हैं, लेकिन जो हमारी जो यथार्थ हमारा प्रकाश है, अलुप्त प्रकाश है, उसका भी लोप नहीं होता। ये सब ज्योतियाँ लौकिक हैं, ये सब बुझ जाती हैं, लेकिन हमारी जो अपनी ज्योति है ना, जो हम ज्योति स्वरूप हैं, उसका कभी नाश नहीं होता, वो बुझने वाली ज्योति नहीं है। उसकी बात कहते हैं कि तमेव भांत मनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, हृदय चानन सब मह चानन होए। मन तो ज्योत स्वरूप है, मतलब ज्योति स्वरूप है, हे मन, उसको अंतःकरण विशिष्ट जीव को कहते हैं महाराज जी। अंतःकरण विशिष्ट जो जीव है उसको मन कहा है यहाँ। हे मन, तू ज्योति स्वरूप है, तू अपने आप को चिदाभास मानता है ना, जीव मानता है, कहते तू जीव नहीं है, तू ज्योति स्वरूप है। मान तू ज्योत स्वरूप है, मतलब ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, ब्रह्म रूप है, पर तेरे को पता नहीं चल रहा। कहते हैं जब तू देखेगा तब तू ज्योति स्वरूप है। अपना मूल पहचान, अपना मूल जो है ना उसको पहचानेगा तब तू ज्योति स्वरूप है। तो मूल पहचानने में तो सारा वेदांत लग जाता उसी पंक्ति में, ये विचार चंद्रोदय पूरा उसी पंक्ति में लगा दो आप। मन तू ज्योत स्वरूप है, कैसे तू मन है, मन मतलब कैसे तू जीव हुआ है ब्रह्म से, पहले उसको उपोधघात करना पड़ेगा। फिर तू जीव अपने आप को कैसे मानने लगा है, फिर तू ज्योति स्वरूप कैसे है। जब तू अंतःकरण विशिष्ट अपने को मानता है तब तू जीव है। तो ज्योति स्वरूप तू कब है, जब तू साक्षी रूप में अपने आप को मानेगा। अपना मूल, आपका मूल क्या है, तेरा मूल ब्रह्म है, उस ब्रह्म को तू पहचान, भाव अपना अभेद कर उसके साथ। सारी प्रक्रिया एक ही पंक्ति में गुरु महाराज ने दी है वहां, लेकिन वो कहते ना सीक्रेट बात है, उसी में सीक्रेट बात है, पूरा वेदांत उसमें घट जाता है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, सारे ग्रंथ उसी में बोल सकते हैं, दो दो चार चार साल बोल सकते हैं महात्मा इस पंक्ति पर, कि कैसे मन हो गया, कैसे ज्योति स्वरूप है, कैसे मूल को पहचानेगा। मूल को पहचानने की यही तो प्रक्रिया है कि अपना जो अध्यास है उसको छोड़ो। ना शरीर है, ना इंद्रिय है, ना मन है, ना बुद्धि है, ये सारा जो अध्यास है इसको छोड़ेंगे, यही मूल को पहचानने की प्रक्रिया है। मूल का अर्थ है अधिष्ठान, सबका आश्रय। अधिष्ठान क्या है? ब्रह्म है सबका। जैसे सर्प का अधिष्ठान रस्सी है, उसी प्रकार प्रपंच का जो आश्रय है, अधिष्ठान है, वो ब्रह्म है। उसको पहचान, उसको पहचान। मान हर जी तेरे नाल है, हे जीव अंतःकरण विशिष्ट जीव, हर जी तेरे नाल है। जो हरि है, प्रभु है, वही अर्थ हो गया ना, वो ब्रह्म है, उसका तेरे साथ अभेद है। तेरे नाल है अर्थ क्या हुआ? तेरे साथ उसका अभेद है, तू अभिन्न है, आत्मा भिन्न ब्रह्म है। मान हे जीव अंतःकरण विशिष्ट जीव, साक्षी रूप में तेरे साथ हरि है। साक्षी रूप में जब अपने आप को जानेगा तब तेरे साथ में हरि है, हरि मतलब ब्रह्म है। मान हे अंतःकरण विशिष्ट जीव, हर जी तेरे नाल है। जो हरि है, जो ब्रह्म है, व्यापक है, वो तेरे साथ, उसका अभेद है, तेरे से भिन्न नहीं है। पर उसका जो अभेदता का, एकता का आनंद है, वो कैसे मिलेगा? गुरमति, गुरमति रंगमान, रंग कहते हैं उसका जो अभेद का आनंद है, रंग का अर्थ आनंद है, उसको मान, उसका अनुभव कर। गुरमति गुरु के पास जा करके अपनी बुद्धि, अपनी मति जो बुद्धि है ना, उसको छोड़ करके गुरमति, गुरु की दी हुई जो बुद्धि है ना, वो कौन सी है? वह शुद्ध बुद्धि है। अपनी मलिन बुद्धि को छोड़ के गुरु के पास जाएगा तब तेरे को गुरमति, गुरु की मति मिलेगी। गुरु के उपदेश के द्वारा जो निर्मल बुद्धि है ना, वो तेरे को प्राप्त होगी। तब तेरे को गुरमति रंगमान, तब तेरे को अपने साथ अभेद ब्रह्म का जो अनुभव है ना, उसका आनंद प्राप्त होगा। तो हम लोगों के साथ यही गड़बड़ हो रहा है कि हम गुरु के पास भी नहीं जा सकते। गुरु के पास जाते हैं तो गुरु की बुद्धि को हम ग्रहण नहीं करते। हम अपनी बुद्धि को जा करके गुरु को देना चाहते हैं, गुरु की बुद्धि नहीं लेना चाहते। गुरुओं के पास जाने पर भी उनकी बुद्धि थोड़ा हम पकड़ते हैं, हम तो अपनी बुद्धि का उनके पास जा करके प्रदर्शन करते हैं कि हमारे को इतना तो समझ में आ गया, बाकी आप बता दीजिए। ये हमारे को जब हम कहेंगे कि हमारे को समझ में है इतना, तो बाकी आप बता दीजिए, तो फिर हमारी बुद्धि तो हम साथ में लेकर के गए हैं ना। जाता जाना तो तब चाहिए जब बुद्धि हमारी हो ही ना हमारे पास, कुछ भी नहीं। हम साथ में लेकर के जब जाएंगे ना, खाली होकर के जाएंगे, तब वहां से मिलेगा। हम अपने साथ बहुत कुछ लेकर के जाते हैं गुरुओं के पास, जगह ही हमारे पास नहीं होती। मानो हमारा पात्र भरा हुआ, थोड़ी सी जगह है तो कहेंगे इतना और डाल दो, पहले तो भरा हुआ है, तो जो पहले भरा हुआ उसमें और क्या डलेगा? थोड़ा डाल भी जाएगा तो उसका असर नहीं होगा। पहले खाली करके जाओ, तभी कहते हैं ना कि साधु को मिलने जाइए, साथ ना लीजिए कोई। कबीर साहब कहते हैं साधु को मिलने जाना हो तो साथ ना लीजिए कोई, साथ में किसी को मत लेकर के जाओ। तो साथ में का अर्थ ये नहीं है कि आप संसार का कोई आदमी साथ में ना लेकर के जाओ, वो तो जितने जाएं आप ले जाओ, किसी का भी भला हो, भले 10 आदमियों को साथ में ले जाओ, लेकिन साथ में क्या ना लेके जाओ, जो काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष राग, ये जितना अंदर हमारे पूरा कड़कड़ भरा है ना, वो कहते साथ में ना लेके जाओ, उसको छोड़ जाओ। साधु के पास जाना हो, गुरुओं के पास जाना हो, तो अपना कहते हैं इस गली में जब हम पैर धरेंगे तो उसका नियम ये है, सिर धर तली गली मुरियाओ, ये कहा है ना महाराज जी ने, सिर को तली के ऊपर रख करके आओ। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस। पहले मरना कबूल करके जीवना की आस छोड़ करके तब आओ। पहले मरण जो है ना उसको कबूल लो कि कैसे मरना कबूलेंगे? इस शरीर को थोड़ी मरना कबूलेंगे, जब शरीर ही मर जाएगा जाएंगे कैसे? पहला मरण कबूल का अर्थ क्या है कि पहले अपनी मैं का जो मारण है उसको कबूल कर लो, भी मैं मर गया, मैं नहीं है मेरे पास, मैं नाम की चीज है नहीं, मैं शरीर हूं, मैं इंद्रिय हूं, मैं गुणी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं पाठी हूं, मैं वेद पाठी, जो कुछ माना था ना इसको मार। पहला मरण कबूल, पहले मरण को कबूल करके जब गुरुओं के पास जाएंगे तो हमारे को मार देंगे, वो गुरु हमारे को मार देंगे इस बात से। उस दिन भी बताया था ना कि गुरु कैसे मारते हैं, कबीर सतगुरु सूर में बाह्या बाण जो एक, सूर में गुरु ने एक ही बाण मारा, एक ही बाण, शब्द रूपी बाण, शब्द भेदी बाण होता है ना, शब्द भेदी बाण जो होता है उसका अर्थ होता है शब्द से किसी को मारना। तो गुरु के पास जाकर के पहला मरण कबूल कि जब जाएंगे मर जाएंगे, पहले ये कबूल करके जाना पड़ेगा कि जब जाना है तो मरना पड़ेगा पहले। तो गुरु मारते कैसे हैं, कबीर सतगुरु सूर में बाह्या बाण जो एक, जब गुरु रूपी सूर में ने शब्द रूपी बाण मारा तो चेला पहले कबूल कर चुका था भी जब गुरु जी का बाण लगेगा तो मैं बचूंगा नहीं, उसको था ना कि बाकी लोगों से तो बच सकता हूं, लेकिन गुरु सूरमा ऐसा है कि उसने कभी किसी को छोड़ा नहीं है, उसके सामने जो भी आया अभी तक कोई बचा नहीं है, ऐसी पहले ही स्वीकार करके गुरु के पास गया था। तो जब गुरु ने शब्द रूपी बाण मारा लागत ही पोए गिर पड़ा, जब उसके शब्द रूपी बाण हृदय में लगा तो लागत ही पोए गिर पड़ा, अपनी जो संसारी बुद्धि थी ना उसको छोड़ के खत्म हो गया, लागत ही पोए गिर पड़ा। पराक्रजे छेक, क्योंकि वो अधिकारी बन के गया था, सीधा उसके हृदय में लगा तो वो जो शरीर के साथ उसकी अटैचमेंट थी उत्थे मर गया, वो संसार से मर गया, भाव संसार छोड़ दिया उसने। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि साता सतगुर क्या करे, साचा सतगुर क्या करे। कबीर साहब जी बात कहते हैं, मरते क्यों नहीं लोग संसार के, गुरु के पास जाके भी क्यों नहीं मरते, उसमें सतगुरु का नहीं दोष, सतगुरु ने तो बाण मारा, तब भी यदि नहीं मरा कोई तो उसमें सतगुरु का दोष है क्या? और कल कोई बता रहा था कि किसी ने कहा कि आप ना पाठ कराइए गुरु ग्रंथ साहब का, किसी ने कहा हमारे घर में भूत है, तो वो कहते भी आप पाठ कराइए गुरु ग्रंथ साहब का तो भूत निकल जाएगा। तो उन्होंने पाठ कराया, कहते बाबा जी भूत तो निकला नहीं है। वो कहते जो आपने गुरु महाराज का स्वरूप घर में लाए थे ना, जो भीड़ होती है वो लड़ीवार थी क्या दूसरी थी? वो कहते दूसरी, कहते इसलिए भूत नहीं निकला। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कबीर साहब जी कहते हैं भी साचा सतगुरु क्या करे जो सिखा में चूक, जो सतगुरु तो सत्ता है सच्चा है लेकिन क्या करेगा जो सिखा में चूक, जब शिष्य के अंदर भूल है, शिष्य के अंदर भ्रम है, गुरु को मान ही नहीं रहा, तो साचा सतगुरु क्या करे जो सिखा में चूक, अंधे एक ना लागे जो बांस बजाई है फूक, बांस में फूक मारो तो भरती है बीच में क्या आगे निकल जाती है, क्यों बांस खाली है, अंधे एक ना लग गई, वो जो अंधे शिष्य है ना उनको नहीं लगती, कहते एक भी गुरु की बात, जो पूरा है वो एक ही मान लगते गिर पड़ता है, लेकिन जो मानते ही नहीं ना, केवल गुरु की परीक्षा लेने जाते हैं, गुरु के ऊपर तर्क करने जाते हैं, उनको एक भी नहीं लगती। कबीर जी कहते हैं सतगुरु क्या करे जो सिखा में चूक, अंधे एक ना लग गई जो बांस बजाई है फूक, जो अंधा है ना, अंधा कैसा है, बुद्धि रूपी नेत्रों से अंधा है, उसके बुद्धि रूपी नेत्र अंधे हैं, अंधे किस लिए हैं, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हमारे नेत्रों में क्या हो जाता है, जब हमारे नेत्रों से दिखना बंद होता तो क्या आ जाता है, मोतिया बिंद आ जाता है, तो उसके अंदर मोतिया बिंद पड़ा है, और गुरुजी जो देते हैं ना उसको नेत्रों में डालना नहीं चाहता, गुरु तो कहते हैं ऑपरेशन करने के बगैर ही हम ठीक कर देंगे आपको, लेकिन वो नहीं मानता, उसको गुरु के पास जाकर के गुरु कहते हैं उसको क्या देते हैं, ज्ञान अंजन, ज्ञान रूपी सुरमा डाल करके उसके जो अंधे नेत्र है ना उसको ठीक कर देते हैं गुरु लोग, लेकिन वो लेना नहीं चाहता। गुरु देते हैं पै किया देश लाइया नैनी, वो कहते हैं तुम भय रूपी सलाइयों को अपने नेत्रों में डालो, भाव का कर सिंगारो, वो कहते प्रेम का सिंगार कर, तब तेरे को पति मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन इसलिए कहते भी सिखा में चूक, सिखों में चूक है, भूल है, भ्रम है, अध्यास है सिखों में, इसलिए उनको एक भी नहीं लगती। लेकिन साचा सतगुरु यदि मिल जाता है ना तो ऑपरेशन तो अवश्य कर देता है। ऐसा सतगुरु जे मिले तुठा करे पसाओ, यदि मिल जाए, पर उसका एक नियम है कि सतगुरु तो मिल जाएगा लेकिन उसके पास जाकर के करना क्या पड़ता है। ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनो सिर सौ पिया विचो आप गवाए, ये गुरु नानक साहब कहते हैं महाराज जी कि यदि ऐसा गुरु मिल जाए तो तिसनो सिर सौ पिया। तो पहले उन्होंने कहा था सिर पर दली गली मेरी आओ, तो तली के ऊपर सिर रखा किसको देने के लिए, बेटा कहाँ करना है उसको, तिसनो सिर सौ पिया। जो सतगुरु है ना सिर उसके आगे जाकर के रखना, इसलिए तली पे रख के गए हैं, बेटा उस किसके पास करनी है, गुरु के पास। तो हम तो सिर रोज रखते हैं, रोज उठा लेते हैं, रोज रखते हैं, रोज उठा लेते हैं, कितनी बार सिर हम रखते हैं, कितनी बार उठाते हैं। तो हम तो उनको कहते हैं ना, उनको गुरु के पास या भगवान के पास रोज जाते हैं, सिर रखा और उठा लिया, दिया थोड़ी उनको, उनके साथ कहते हम लोग धोखा करते हैं, उनको कहते हैं कि दे दिया फिर उठा लेते हैं कि इनको होगा कि हमारे को दे दिया, लेकिन हमने फिर उठा लिया। चलाकी तो हमारे पास है ना, वो कहते भगवान के फिर कौन सी चलाकी आती है, एक बार दो फिर उठा लो, तो उनको भ्रम हो जाएगा कि मेरे को दे दिया है, ऐसा नहीं होता है। जब देंगे तभी आपको कुछ आगे से मिलेगा, नहीं तो मिलता नहीं, इसलिए मिलता भी कुछ नहीं है, जितना आप झुकते हैं उतना का आपको मिल जाता है। कहते हैं ऐसा सतगुरु जे मिले तिसने सुर सोपिए बिचो आप गुआए, उसको सिर देने का अर्थ क्या है, अपना आप उनके आगे अर्पित कर दो कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, जब हम होते तब तू ना ही, अब तू ही मैं ना ही। ये कहते हैं ना भक्त, भक्त जी कहते हैं कि जब तक मैं था तब तक तू नहीं था, एक ही तो बात रहेगी ना। बकरा जो होता ना बकरा, जब तक मैं करता है ना, वो देखा हो जब तक जीता रहता है मैं करता है, जब उसको मार के उसकी चमड़ी की तार बना के सरंगे के ऊपर चाढ़ते हैं तो तू तू की आवाज देता है, तबले के ऊपर चाढ़ देते ना उसका बना के चमड़ा तो तू तू की आवाज करता है, लेकिन मरने से पहले नहीं किया उसने, जब तक जीता रहा तब तक मैं ही करता रहा, जब उसने अपने आप को समाप्त किया तो तू तू करने लगा। इसलिए कहते हैं जब हम होते तब तू ना ही, जब तक मैं मेरे में थी ना तब तक तू नहीं था, अब तू ही मैं ना ही, अब केवल तू ही तुम बचे हो, मैं है ही नहीं, अब मेरे में मैं तो समाप्त हो गई। तो हमारी बात यह है कि हम गुरु के पास जाएं तो इस प्रकार जाएं जैसे महाराज जी हमारे को जाने की विधि बताते हैं कि पहला मरण कबूल है, जीवन की छड आस हो सबना की रेण का, सबना की रेण का, सबकी रेण, भाव अपने आप को निम्रता से सबका सबसे छोटा मान करके आओ, तब आओ हमारे पास। उन्होंने हमारे को नियमावली बताई कि हमारे पास आने की ये विधि है, यदि कर सकते हो तो आओ नहीं तो मत आओ। एक तो मरना कबूल करो, पहला मरण कबूल और जीने की तो आस ही छोड़ दो, और सबकी रेण हो करके सबकी धूली हो करके हमारे पास आ सकते हो तो आओ, नहीं तो आने की जरूरत नहीं है। इत मार्ग पैर धरीजै सिर दीजै कान न कीजै, यही बात कही ना, जो तो प्रेम खेलन का चाहो, यदि आपको प्रेम रूपी खेल खेलने की इच्छा है, लालसा है, प्रेम की खेल खेलना चाहते हैं तो सिर को तली के ऊपर रख के आओ। और इत मार्ग पैर धरीजै, ये ऐसा मार्ग है प्रेम का, इसमें पांव धरना हो केवल, चलने की बात तो दूर की है, यदि इस मार्ग के ऊपर पैर भी रखना हो ना तो सिर दीजे कान न कीजे। सिर देने के लिए कान कहते हैं संसार की लज्जा मत करना कि हमारा सिर कट जाएगा, इनको सिर दे देंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती से मत डरो, क्योंकि जब प्रेम करता है ना कोई तो उसको संसार की लज्जा छोड़नी पड़ती है, जाति की लज्जा, धर्म की लज्जा, प्रेम करने वाले को बहुत कुछ जो है ना, जो प्रेम करने वाला उसको पता चलता है कि प्रेम में कितनी अड़चने आती हैं, भाव उसको हटना पड़ता है सबसे, सबसे तोड़ करके केवल उसको अपने प्रियतम से प्रेम करना पड़ता है, तभी प्रियतम मिलता है। तो हम लोग प्रेम करते कैसा हैं? प्रेम तो हमारा संसार से है, दिखावट हमारी है कि हमारा प्रभु से है। संसार की लज्जा तो हम छोड़ ही नहीं पाते ना, कहते हैं कोई क्या कहेगा, ये गुरुद्वारे जाने लगा है, ये मंदिर में जाता है, ये लज्जा रहती नहीं कि हमारे को लोग कहेंगे 4 बजे कहाँ जाता है मंदिर में, वहां जाता है तो पता नहीं वहां से कोई चुराता होगा सुबह सुबह, यही बात सब लगती है ना हमारे ऊपर। कहते हुए लोग कि तुम 4 बजे जहां झाड़ू लगाते हो इसलिए कोई खैर नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। कोई जब आता प्रबंध में आता तो उसको कहते तुम इसलिए नहीं पूरा पूरा दिन वहां रहते, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यही कहते ना लोग। तो इसका मतलब है लज्जा हमारे को छोड़ कहां पाते हम, कहने वाले तो कहेंगे। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि लोगों की लज्जा छोड़ करके आओ, क्योंकि जब नाची तब घूंघट कैसा, ये कहते हैं गुरु महाराज जी। जब नाचना है तो फिर घूंघट कहां से, घूंघट उतार के नाचो कहते हैं। फिर एक गुरु महाराज के दरबार में आना है, प्रभु के पास आना है, तो घूंघट का अर्थ है कि संसार की लज्जा छोड़ करके, कि संसार के लोग क्या कहेंगे, मेरे बंधु बांधु क्या कहेंगे, उनको छोड़ करके आओ, तो तब हमारा जो अध्यास है वो छूटेगा। ये अध्यास की बात चल रही है, इतनी बातों से तो हम लोगों को अब स्पष्ट हो जाना चाहिए कि गुरु के पास जाएं तो सारी लज्जा छोड़ करके अपना काम क्रोध क्रोध मोह आदि जो है ना विकार हमारे अंदर, उसको छोड़ के अपने मन को खाली करके जाएंगे तभी मिलेगा। भांडा धोए, कहते हैं ना दूध लेने जाना हो तो भांडा साफ करके, बर्तन साफ करके जाना पड़ता है, भांडा धोए फिर करके कहते हैं कि उसको धूप दिखा करके उसको साफ करके फिर दूध लेने के लिए जाना पड़ता है। उसी प्रकार हमारे को भी जो हमारा अंतःकरण रूपी बर्तन है ना, उसको मल से विक्षेप से हटा करके, उसके अंदर मल है, पापों की मैल लगी हुई है और चंचलता है उसके अंदर, दोनों को हटा करके जब खाली करके जाएंगे ना, केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाएंगे, तो फिर ज्ञान मिलता है गुरु के पास से। वो जो हमारा पर्दा है उसको हटा देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जगह होती है ना ज्ञान को लेने की, तब फिर हमारे को गुरु हमारे ऊपर कृपा करते हैं। ऐसा सतगुरु जे मिले तिसने सुर सोपिए, बिचों आप गवाए, अपना आप गवा करके, जब अपना आप हम खत्म करते हैं, आप गवाइए ता सोह पाइए, और कैसी चतुराई, और कोई चतुराई सियाणपा कितने काम ना आइए। ये कहते हैं चतुराई और सियाणप से कभी प्रभु नहीं मिलता, चतुराई ना चतुर्भुज पाइए, भोले भाई मिले रघुराया, भोले भा से मिलता भाव, चलाकी छोड़ करके अहम को छोड़ करके, जैसे धन्ने को मिला ना भोले भाव मिला है, इसलिए भाई धन्ना को मिला ना भक्त धन्ना को भोले भाई मिला है, उसको तो ब्राह्मण ने तो उसके साथ मखौल ही किया, उसको हंसी की ना कि जाट हमारे पीछे पड़ गया, कहीं पीटे ही ना हमारे को। पहले तो प्रेम से उन्होंने कहा कि पंडित जी एक मेरे को भी ठाकुर दे दो, तो उन्होंने कहा जाओ जाओ आपको क्या पता ठाकुर क्या होते हैं, आपकी जाके भैंस गाय चराओ, आप खेती का काम करो, आपसे क्या लेना। तो कहते नहीं हमारे को भी दे दो, तरला मारा लेकिन नहीं माना। तो फिर धन्ना जी ने कहा जानते हो मैं जाट हूँ, हमारे को लेना भी आता है, जब प्रेम से नहीं दोगे तो हम ले जाएंगे सभी उठा के, तुम्हारी गड़बी गुड़बी फेंक देंगे उठा के। तब उसने कहा कि इसका क्या पता है। तो कहते हैं भाई गुरदास जी महाराज ने कहा कि पत्थर एक लपेट कर दे धन्ने नो गैल छुड़ावे, एक पत्थर पकड़ा पंडित जी ने लपेट के धन्ने को दे के गैल छुड़ावे, खड़ा छुड़ाया भी जट को जाने दो कहीं पीटे ही ना। भाई गुरदास जी ने ऐसा स्पष्ट लिखा है, पत्थर एक लपेट कर दे धन्ने नो गैल छुड़ावे, गैल छुड़ाई पल्ला छुड़ाया भी धन्ने को दे दो छोड़ो। लेकिन वो भोले भाई मिले रुकराया, उसको इतना निष्ठा थी इतना विश्वास था ना, बता दिया था किसी ने कि ये ठाकुर की सेवा करने से सब कुछ मिलता है, ये पहले लिखा है भी ऐसा उसको किसी ने बताया था, ब्राह्मण पूजे देवता धन्ना गऊ चरावण जावे, लिखा भाई गुरदास जी ने। धन्ना जी हर रोज गां भैंसे चराने जाते थे, रास्ते में ब्राह्मण पूजा करता था। तो फिर धन्ने को भी किसी ने कहा, ठाकुर की सेवा करे जो इच्छे सोई फल पावे। इस ठाकुर की इच्छा करने से जो भी कोई कहता है ना वही उसको मिलता है। तो धन्ना करदा जोदड़ी, मैं भी दे जे तो भावे। धन्ने ने हाथ जोड़ के कहा, पंडित जी यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे को एक दे दो। हाथ जोड़ के कहा भी यदि आपको अच्छा लगता तो मेरे को भी एक दे दो। तो पत्थर एक लपेट कर दे धन्ने नो गैर छुड़ावे, कहते दे दिया। पर धन्ना जी ले गए प्रेम से, तो जब प्रेम से लेकर के घर में जाकर के ठाकुर जी को रखा तो हाथ जोड़ बेनती करे। फिर ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ करके बेनती की धन्ना जी ने कि भोग लगाओ। लेकिन उसको क्या मालूम था कि पंडित जी आगे थाली रखते हैं और आगे पर्दा करके थोड़ी देर में उठा के आप खा लेते हैं। धन्ने को थोड़ी मालूम था कि भोग कैसे लगता। उन्होंने कहा ठाकुर खाएंगे। कितनी देर रखा लेकिन ठाकुर जी कहाँ से आना था। धन्ना लेकिन माने नहीं, वो कहते खाएंगे तभी छोड़ेंगे। हाँ भी मोह ना जूठा आलसा। धन्ने ने कहा मैं भी जूठा मुंह नहीं करूंगा, यदि तुम रुस गए हो तो हमारे को कुछ अच्छा नहीं लगता, जब आओगे तभी खाएंगे। तो कहने का भाव है कि ठाकुर को धन्ने की भक्ति देख करके आना पड़ा, क्योंकि वो भोला भक्त था ना, उसके अंदर चतुराई नहीं थी, उसको मालूम नहीं था, पद्धति नहीं आती थी उसको। भोग लगाने की तो पद्धति होती है वही कि भोग लगाएंगे थोड़ी देर के लिए रखेंगे तब उठा लेंगे तब बांट के खा लेंगे। लेकिन वो भोला भक्त था ना, उसको नहीं मालूम था इस भक्ति का। उसने तो कहा खाइए आकर के, तभी भगवान को आना पड़ा। इसलिए कहते हैं कि जो चलाकी है ना चतुराई है उससे चतुर्भुज नहीं मिलता। भोले भाए मिले रघुराया, तो भोले भा का अर्थ क्या है, जो हमारे अंदर चलाकी चुस्ती जो छल कपट धोखा जो हमारे अंदर पड़ा हुआ ना उसको निकाल के सरल हो जाओ, एकदम साफ मन हो जाओ, वही भोलापन है ना। कहते ना ये बहुत भोला भक्त है, जो सीधा साधा होता है उसका मतलब क्या, उसको चलाकी नहीं आती, इसलिए उसका नाम कहते थे ये भोला भाला आदमी है, उसको चलाकी नहीं आती। इसका मतलब हम लोगों को कोई भोला क्यों नहीं कहता, हम चलाक हैं कि नहीं। हमारा नाम कभी किसी ने भोला नहीं पाया, भी ये भोले भाले हैं। किसी किसी का नाम होता है ना, तो हमारा नाम नहीं भोला पड़े तभी हो कि हमारे अंदर से चलाकी चले जाए, चुस्ती चलाकी चतुराई। हम लोग चतुराई से भगवान को लेना चाहते हैं, चतुराई से मिलता नहीं है। इसलिए ये सब बातें महात्माओं के पास जाने से मिलती है कि हम लोग अपना अहम छोड़ करके, संसार का जो मोह है ना उसको छोड़ करके तब जाएंगे तो फिर हमारे को मिलेगा प्रभु। वो तो सब जगह है पर केवल हमारे की उसको देखने की पात्रता नहीं बनती। ये हम विचार करते आ रहे हैं विचार चंद्रोदय में। छह कला हमने देखी है पहले, तो अब सातवीं कला आगे आरंभ होती है। छह कला आपने पहले से सुनी, महाराज ने आपको बहुत सुनाई है, लेकिन सातवीं कला में प्रवेश करने के लिए जब सातवीं सीढ़ी चढ़ेंगे तो विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा। छह सीढ़ी के ऊपर तो आपको स्वामी जी ने सवार कर रखा पहले से, लेकिन सातवीं में जाने के लिए तैयार हो जाओ तभी जाएंगे ना। जब छह चढ़ गए हैं तो सातवीं भी चढ़ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। सोलह कला है तो सोलह कला संपूर्ण पढ़या, अंत कला हो ठाकुर चढ़या, सोलह कला भी हम संपूर्ण कर सकते हैं। सातवीं कला में कहते हैं आत्मा के विशेषण, आत्मा का स्वरूप कहते हैं। पहले छह कला में तो केवल संसार का रूप दिखाया आपको कि संसार कैसा है, तीन अवस्था रूप है, पांच कोष रूप है, तीन शरीर रूप है, यह सारा कुछ पहले बताया। अब संसार को हटाना है, जहां तक तो संसार खड़ा करके दिखाया, ये बना कैसे है, किस तरह का है, अब उसको हटाना है। मैंने पहले मकान बनाया ना तो हम जान गए इसमें क्या 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 लगा है। अब जब उसको मकान को गिराना है हमने, तो हमारे को पहले मालूम हो गया कि इसमें ये है, इसमें झरिया है, इसमें सीमेंट है, इसमें दरवाजे लगे हैं, तो अकेली अकेली चीज को हटाते जाएंगे तो मकान समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार संसार के कितने पार्ट हैं हमारे को सब बता दिए, इसमें 5 कोश हैं, 3 शरीर हैं, 3 अवस्था है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 प्राण है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, 5 तत्व हैं, सब बता दिए ना सामग्री। अब उसको हटाना कैसे है, जहां से शुरू आरंभ करते हैं, आत्मा के विशेषण भाव, आत्मा को जानो कि आत्मा कैसा है। जब आत्मा को जान जाएंगे, संसार को हमने पहले जान लिया कि संसार इस तरह का है, अब आत्मा को जान जाएंगे भी आत्मा ऐसा है, तो 2 चीजें हमारे को पता चल जाएगा, उसमें से आत्मा को पकड़ लेना है, संसार को छोड़ देना है। पहले संसार की हमारे को पहचान अच्छी तरह करा दी है ना, इस संसार में क्या क्या सामग्री लगी हुई है, सब उनको याद कर लेंगे ना, 5 कर्मेंद्रिय काम, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण हैं, 4 अंतःकरण हैं, 5 कोश हैं, 3 शरीर हैं, 3 अवस्था हैं, ये सब संसार के पार्ट हैं, इनको याद रखेंगे। उसके बाद आत्मा की पहचान करा रहे हैं हमारे को शब्दों से, वैसे तो नहीं होती है लेकिन शब्दों से हमारे को समझाने के लिए। उसके बाद में इन दोनों का आपस में हम लोग विचार करेंगे ना कि ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, तो जो सार है उसको रखेंगे, जो असार है उसको छोड़ देंगे। अब कहते हैं आत्मा के विशेषण है जो 2 भांति, 2 प्रकार के आत्मा के विशेषण हैं। पहले भी आपको बताया था कि विशेष होता है, एक उसका विशेषण होता है, जैसे दंडी पुरुष है, दंड वाला पुरुष है, किसी के हाथ में डंडा पकड़ा हुआ है ना, तो उसको हम डंडे के कारण उसको दंड वाला कहते हैं, डंडे वाला जा रहा है, तो दंड जो उसका विशेषण हुआ, विशेषण कहते हैं जो दूसरे से अलग करके दिखाता है, जो डंडा है ना उस आदमी को दूसरे आदमियों से अलग करके दिखा रहा है, डंडे का उसके साथ संबंध नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी उसको अलग करके दिखा रहा है, डंडा उसका अंग नहीं है, उसके साथ में नहीं रहता है, डंडा इधर भी रख सकता है, फिर भी उसको दिखाता है अलग करके। इस प्रकार आत्मा के कुछ विशेषण बताए ग्रंथकारों ने, केवल संसार से अलग हमारे को पहचान हो जाए कि आत्मा ऐसा है, वैसे उसमें विशेषण विशेष भाव होता नहीं है, लेकिन हमारे को बताने के लिए कुछ शब्द कल्पना की है। कौन कौन से विशेषण कहते हैं, 2 प्रकार के विशेषण है आत्मा के, एक विधेय विशेषण है, एक निषेध विशेषण है, निर्धारे ऐसा निश्चित किया है। निषेध कहते हैं किसी चीज को मना करना, हटाना, और विधेय कहते हैं विधान करना, भी ऐसा मानो, समझ गए ना। कई बातें जो है कानून जो हमारे को बनाया जाता है कि इस कानून को आपको मानना पड़ेगा, विधि की होती है, विधान किया होता है, आज्ञा करते हैं भी ऐसा मानना, एक दूसरे होते हैं भी ये काम आपने नहीं करना, आपने नशा ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये चीज नहीं खानी, मना करना निषेध होता है, और किसी चीज में लगाना विधान होता है। 2 प्रकार के आत्मा के विशेषण हैं, एक निषेध हैं, दूसरे विधेय हैं, समझ पा रहे हैं। आत्मा को 2 तरह से जाना जाता है, एक तो बताएंगे भी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये विधेय हो रहा है, भी ऐसा मानो, ऐसा मानो, ऐसा मानो, ये है आत्मा के विधेय विशेषण, और दूसरे हैं निषेध, ये ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, 2 प्रकार के हो गए ना। आप जैसा मान लोगे आपको दोनों तरह से ज्ञान हो सकता है, जहां तो आप मान लो कि आत्मा सत्य है, चित्त है, आनंद है, ऐसा मानते जाओ तब भी आपको आत्मा की पहचान हो जाएगी, जहां आप कैसा मानेंगे अखंड है, खंड नहीं है, आकार नहीं है, निराकार है, ये मान लेंगे ना, अजन्म है, उसका जन्म नहीं होता, 2 प्रकार से मान लोगे, किसी प्रकार से मान लो आपको ज्ञान हो जाएगा, जहां तो विधेय मान लो या निषेध मान लो, दोनों तरफ से हो जाएगा। ऐसी पद्धति उपनिषदों में, ब्रह्म सूत्र में, सब में ऐसे ही है, जतो वायमानी भूतानि जायन्ते, ये कहा कि जिससे जन्माद्यजतः, जिससे जे संसार की उत्पत्ति पालना और लेता होती है वो ब्रह्म है, ऐसा भी कहते हैं, ये है विधेय, ये उसके तटस्थ लक्षण है और इसका एक स्वरूप लक्षण है सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, वह सत चेतानंद स्वरूप है। उसी प्रकार ये कहते हैं कि दो प्रकार के विधेय और निषेध विशेषण है आत्मा के। समझ आई कुछ आपको? समझ में आई? आत्मा को दो तरह से जाना जा सकता है, एक तो विधेय रूप से, भी आत्मा सत रूप है ऐसा मान लो, आत्मा चेत रूप है ऐसा मान लो, ये विधान किया जा रहा ना, विधान कहते हैं भी ये बात मानो, आपको मानने के लिए कहा जा रहा है। एक बात आपको छोड़ने के लिए कहा जाता है, ऐसा नहीं मानना, ऐसा नहीं मानना, ऐसा नहीं मानना। दो प्रकार से आत्मा को बताया जाता है। तो ये कहते हैं कि जो दो प्रकार के आत्मा के विशेषण है ना, चिन्ह है ना, उसके भी ऐसा है ऐसा है, वे सब जान भले गुरु शास्त्र सु। वो आपको पता कैसे चलेगा? गुरु से, शास्त्र से, अपने आप तो नहीं ना पता चलता। कोई भी संसार की भी हम वस्तु को पहचानना हो ना, हमारे को पहचान करनी हो ना, जैसे हम किसी काम को सीखते हैं ना, कोई भी कपड़े को, कपड़े की दुकान हमने करनी है, ज्वेलरी की दुकान खोलनी है, तो पहले हमारे को सीखना पड़ता कि नहीं? तभी हम पहचान पाते हैं कि ये कपड़ा सही है कि गलत है, कैसा होना चाहिए, ये सोना गलत है कि सही है। तो पहले हमारे को उसके लिए पहचान करनी पड़ती ना, गलत सोना, जो शुद्ध सोना है वो कैसा होता है, जो अशुद्ध सोना है वो कैसा होता है, कपड़ा जो सही नहीं होता वो कैसा होता, जो सही होता, सब जानना पड़ता है ना। इसी प्रकार आत्मा को कहते हैं आप कैसे जानेंगे? गुरु से और शास्त्र से। गुरु भी चाहिए, शास्त्र भी चाहिए, इसलिए पहले आया था कि गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, वेद कृपा और अपनी कृपा, चार कृपा होती है तभी आपको चिंतन कर सकते हैं आप। गुरु की कृपा भी होनी चाहिए, शास्त्र की भी होनी चाहिए, ईश्वर की भी होनी चाहिए, अपनी भी होनी चाहिए, चार कृपा आपके ऊपर होनी चाहिए। तो इसलिए आपके ऊपर सभी कृपा है, यहाँ पर शास्त्र भी सुनने को मिल रहा है, ईश्वर की कृपा नहीं होती तो आप यहाँ नहीं आते, और गुरु आपके पास बैठे हुए हैं और अपनी कृपा आप कर रहे हैं तभी आए हैं यहाँ। तो सभी कृपा अपने पास हैं, उनका उपयोग केवल करना है। ये कहते हैं कि ये जो आत्मा के विशेषण हैं उनको भली प्रकार गुरु और शास्त्र से जान करके जो उसका चिंतन करेगा अपनो निज रूप निहारे, वो अपने रूप का दर्शन कर सकता है। जिज्ञासु को आत्मा के विशेषण गुरु से जान करके भली प्रकार का चिंतन करके अपने रूप का साक्षात करना चाहिए, आत्मा का दर्शन करना चाहिए। आत्मा वारे दृष्टव्या, आत्मा को निहारे, आत्मा का दर्शन करे, क्योंकि आत्मा ही दृष्टव्या, आत्मा ही दर्शन करने के योग्य है। गुरु महाराज जी भी कहते हैं कि प्रीतम जान ले हो मन माही, केवल यदि जानना है तो प्रियतम को जानो, जानने के योग्य कौन है? प्रियतम है। तो ये कहते हैं कि जो इस आत्मा के विशेषणों को गुरु व शास्त्र से जान करके उसका चिंतन करेगा वो अपने रूप को निहारे, निहारे मतलब देखना, अपने आत्मा का दर्शन कर सकता है, अनुभव कर सकता है, साक्षात कर सकता है। कैसे वो विशेषण है? आरंभ करते हैं सच्चिदानंद, ऐसा आरंभ करते हैं कि आत्मा कैसा है? सत है, चित है, आनंद है, नेम तो ये तीन ही विशेषण है, इन्हीं को अस्ति भाति प्रिय भी कहते हैं। सत का अर्थ क्या होता है? जिसका तीनों कालों में कभी नाश नहीं होता उसको सत कहते हैं, जो पहले भी होता है, अभी भी है, बाद में भी रहेगा, ऐसा सदैव सोमेद मग्रासीत एकमेवा द्वितीयम, सत ही था ये सोम्य, सत ही था ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये पहले सत रूप में ही था, अभी ये व्यक्त हो गया, पहले अव्यक्त रूप ये सत रूप में ही था। भाव सर्वम खदम विदम ब्रह्म, ये आपको जो दिखाई पड़ रहा है ना संसार रूप में, नाम रूप में, ये पहले सत्य ही था, भाव ये ब्रह्म ही था पहले, अभी भी ब्रह्म है, केवल आपको नाम रूप के कारण ऐसा दिखाई पड़ता है। पहले ये सत्य ही था बीज रूप में, अब ये केवल प्रकट हो गया वृक्ष रूप में। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा इसी की है, पहले ये बीज रूप में था, अभी ये वृक्ष रूप में आपको दिखाई पड़ रहा है। जब ये वृक्ष को फल लगेंगे तो फल के बीज में बीज आएगा, तो फिर ये बीज रूप हो जाएगा। बाट में वृक्ष है के वृक्ष में बाट है ये पता नहीं चलता, बीज में बाट है के बाट में बीज है कोई पता नहीं चलता। भाव जो वृक्ष होता है ना बीज का रूप ही होता है। ये आपको जो संसार दिखाई देता है ना सत्य ही था, अभी भी सत्य ही है, भले आपको संसार रूप में दिखाई पड़ता है ये सत्य ही। आत्मा वही सर्वदम, ब्रह्म वहीदम सर्वम, कहते हैं ये ब्रह्म ही है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये ब्रह्म ही है, आपको अलग दिखाई पड़ता है। यह विश्व संसार तुम देखते हो हर का रूप है, आप भले इसको विषय का रस लेते हो, ये हर का रूप है, ये तो हरि ही है, विषय नहीं है आपको लगता है। कल को आगे इसका विचार करेंगे, आज समय हो गया। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।